I bring greetings and glad tidings from Providence Evangelical Bible Church in Panvel and also my family. आपके बीच में क्रिसमस की बड़े दिन की खुशियां मनाने के लिए मैं मेरी कलीसिया की ओर से खुशियां लाता हूँ, सलामी लाता हूँ और नमस्कार. इस बड़े दिन के शुभ अवसर पर जैसे हम ख्रिस्त जयंती जिसे हम कहते हैं यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं और 16 साल के बाद मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं है, मतलब ये नहीं कि भाग गई. मेरी सासु माँ की बीमारी के कारण वो केरला में है और वो अभी जो मेरे रिश्तेदार है पत्नी की ओर से वो रोमन कैथलिक है और उनको सुसमाचार बता रही है ताकि वो भी सच्ची खुशी जो यीशु मसीह के उद्धार के रूप में हमें मिली है वो भी वो उसमें सहभागी हो सके. मैं परमेश्वर का आभारी हूं और उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि फिर एक बार नासिक बाप्टिस्ट चर्च में आने का एक सुनहरा मौका मुझे मिला और पास्टर ग्यारह के निमंत्रण के लिए मैंने स्वीकार किया. और खुशी की बात यह है कि मेरे भाई फादर सालवे भी नागपुर से यहां मौजूद है, जिनको देख के मुझे बहुत आज खुशी हुई उनके परिवार के साथ में. रियली नाइस टू सी फादर सालवे विद अस फ्रॉम नागपुर, all the way from Nagpur, and then it's nice to see you, all of you. I know Nasir Baptist Church in a romantic mood. The sitting positions are changed. Everybody is finding their partners and sitting with them, which is very nice. So I'm going to just enhance that romance. Well, I'm missing, you know. I'm jealous of you guys. आइए फिलिपी के राजपत्र इसका दूसरा अध्याय की ओर मुड़ेंगे. दो वचन मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, एक तो फिलिपी के राजपत्र इसका दूसरा अध्याय और दूसरा लुका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और उसमें से कुछ वचन हम देखेंगे. पहला जो है फिलिपी के राजपत्र, पौलुस ने लिखा हुआ ये पत्री है और इस पत्री में यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है. लेकिन जो वचन आज इस सुबह के समय में क्रिस्त जन्मदिन के शुभ अवसर पर, बड़े दिन के अवसर पर आज परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है वो है फिलिपी के राजपत्र इसका दूसरा अध्याय, पांच वचन से लेके आठ वचन तक. मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा, कृपा करके आप अपने बाइबल में ध्यान दीजिएगा. मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं फिलिपी के राजपत्र इसका दूसरा अध्याय, पांच वचन से लेकर आठवें वचन तक. जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु को न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली. उस वचन को पूरा करने के लिए 9 और 10 वचन भी 11 वचन भी हम पढ़ेंगे ताकि पूरी तरह से संदर्भ हमारे समझ में आए. इस कारण परमेश्वर ने अपने उसको अति महान किया और उसके नाम को जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है. आइए इस पढ़े हुए वचन के ऊपर हम परमेश्वर की ओर से आशीष मांगे. हमारे प्यारे पिता प्रभु, इस सुनहरे मौके पर प्रभु जी आपने हमारे बीच में उपस्थिति ली है, आप अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान है, हर हम आपकी संतान आपके चुने हुए दास प्रभु जी आपके सामने सिर झुकाकर आपकी उपासना और आराधना अभी कर रहे हैं। हमारे द्वारा प्रभु जी की हुए गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा और प्रभु जी एक प्रकार की जो गवाही हम आपके लिए बनना चाहते हैं उसके द्वारा प्रभु जी की हुई उपासना और आराधना आपको कबूल हो। आपके दास को प्रभु जी आपके क्रूस के पीछे छुपाकर प्रभु जी उसके पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर प्रभु जी आपके चुने हुए लोगों के बीच में आपका वचन बांटने के लिए प्रभु जी विशेष तौर से सहायता और मदद कर। हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे दिलों को खोल दे प्रभु जी, ताकि आपका वचन जो तुद्धारी तलवार से भी तेज है, आप एक हथौड़े के जैसा है प्रभु जी, हमारे मन को, हमारे हृदय को छू पाए और प्रभु जी चीर कर प्रभु जी आपके वचन को, प्रभु जी हमारे आपके वचन का बीज प्रभु जी हमारे हृदय में बो पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन से प्रभावित होकर, उत्तेजित होकर, प्रेरित होकर प्रभु जी हम आपकी उपासना और आराधना अधिक अधिक पवित्र मन से कर पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में सागर करता हूं पिता, आमेन। जैसे कि आपके नोट्स में देखा है कि मैंने एक टाइटल वहां पर रखा हुआ है, उसके पीछे नोट्स भी है, अगर यू विल सी बैक साइड ऑफ दैट वन राइट हियर, सो इफ यू वांट टू राइट डाउन द पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन। इट्स नाइस टू सी नासी बैप्टिस्ट चर्च आर डूइंग दैट वन, आई शुड डू दैट वन इन आवर चर्च टू। लास्ट टाइम ब्रदर उरिया वॉज हियर, ही कॉपीड दिस वन देयर, सो मे बी दिस टाइम आई एम श्योर आई विल कॉपी दिस वन देयर, वी आर जस्ट कॉपिंग यू गाइज। Majestic, mysterious, miraculous condensation and composition of Jesus Christ. दो शब्द है, बड़ा लंबा सा नाम है, उसको छोटा करते हैं। परमेश्वर को एक चेहरा मिला, God has got the face. I just shortened it. God has got the face. परमेश्वर को एक चेहरा मिला और दो वचन हम देखेंगे। पहला तो ये फिलिपी का राष्ट्र का है, जहां से हमें पता चलेगा कि किस तरह से सियासत से लेकर रियायत तक परमेश्वर आ चुके हैं, किस तरह से अपने सियासन से, अपने राजगद्दी से, अपनी सत्ता, अपनी पवित्रता, अपना गौरव, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य छोड़कर परमेश्वर इस दुनिया में देहदारी बनकर आए। इतना ही नहीं, वो नम्र और दीन बन गए, वो एक परमेश्वर का स्वरूप छोड़कर मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। इतना ही नहीं कि उन्होंने एक शापित क्रूस का मृत्यु भी आपके लिए और मेरे लिए सह लिया, और हम देखेंगे कि किस तरह से ये हुआ। दैट इज कॉन्डेंसेशन, किस तरह से वो वहां से नीचे उतर कर आए। और फिर लुका रचित सुसमाचार में हम देखेंगे पहले अध्याय के कुछ वचनों में कि किस तरह से उन्होंने जन्म लेने के लिए वास्तविकता, वास्तव में वो किस तरह से इस दुनिया में आए, किस तरह से वो एक कुंवारी के पेट से जन्म पाए, किस तरह से उनकी गर्भधारणा हुई। दैट इज कंसेप्शन, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक। योहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 14 वचन कहता है कि वचन देहदारी हुआ। योहन्ना 1:14, वचन देहदारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखिए कि सृष्टि देखिए किस तरह से वो वचन कहता है। उसके आखिरी जो लाइन है आयते है उसको देखिए, योहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 14 वचन कहता है, उसकी ऐसी महिमा हमने देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा है। वचन जब देहदारी हुआ तो एक बदलाव हुआ, यह बदलाव ऐसा था कि जो परमेश्वर के पिता के एकलौते की महिमा थी, जो स्वर्ग में थी, ऐसी महिमा हमने देखी। यूहन्ना कहता है हमने देखी उस महिमा को। यीशु मसीह खुद अपने मुंह से जब पिलातुस के साथ में जब वो पकड़े गए, उनको कैदी बनाया गया, और जब उसको कोर्ट में यीशु मसीह को लाए गए तब यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय और 37 वचन में यीशु मसीह खुद पिलातस से कहते हैं, पिलातस ने जब उनसे कहा कि क्या तू राजा है, यीशु ने उत्तर दिया, देखिए किस तरह से यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया कहता है तू कहता है मैं राजा हूं, और देखिए यीशु क्या कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही बनूं। आई थिंक दैट्स वेरी गुड पर्पज, आई केम इन टू दिस वर्ल्ड एंड आई वॉज बॉर्न सो दैट आई बिकम अ टेस्टिमनी ऑफ ट्रूथ, मैं सत्य की गवाही बनूं, जो कोई सत्य का है वो मेरे शब्द को सुनता है। यही बात गलती का राजपत्र इसका 4वां अध्याय 4वां वचन में भी लिखी गई है, वही बात पहला तिमत्ती इसका 1वां अध्याय और 15वां वचन में भी ली गई है, जिसको हमने कैरल सिंह के टाइम में देखा था। इब्रानी की किताब इसका 2वां अध्याय 9वें वचन में भी यही बात लिखी गई है, उसके 14वें वचन में भी यही बात लिखी गई है, उसके 17वें वचन में भी यही बात लिखी गई है। द एंट्रेंस ऑफ गॉड इन टू दिस वर्ल्ड इज वेरी यूनिक। परमेश्वर यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना एक अतुलनीय बात है, एक अद्भुत बात है, एक अद्भुत कार्य है, एक महान गौरवशाली परमेश्वर का इस दुनिया में आना। जब मैं इस संदेश को तैयारी कर रहा था और प्रार्थना में था, तो जब इस वचन के ऊपर आया तो मैंने कहा कि हाँ, परमेश्वर का एकलौता पुत्र हमारे लिए देहधारी बनकर इस दुनिया में आया है। फिर मेरे मन में आया, वो तो परमेश्वर है, वो कभी भी आ सकते थे, कभी भी जा सकते थे। यीशु ने ऐसा क्यों नहीं कहा अपने पिता से कि ए पिता देख, मुझे यहां भी अच्छा लगता है और मुझे वहां भी जाना है, तो ऐसा करते हैं कुछ समय के लिए मैं वहां चला जाता हूं, फिर मैं आता हूं, फिर जब चाहिए तब जाता हूं, फिर वापिस आता हूं, फिर जाता हूं, फिर वापिस आता हूं। अगर ऐसा होता तो शायद आज क्रिसमस में यीशु मसीह हमारे साथ में होते, या फिर हम विशेष तौर से उनको निमंत्रण देकर कहते आ जाओ आज हमारे साथ में इस साल में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक ही बार, पूरे इतिहास इस बात की गवाही है कि एक ही बार ऐसा हुआ है, ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये अभूतपूर्व है। दिस इज मिराकलस, एक चमत्कारिक है, दिस इज मिस्टीरियस, ये गूढ़ है, रहस्यमय है, इट इज मैजेस्टिक, ये एक वैभवशाली ऐश्वर्यशाली बात है कि सियासत छोड़कर रियायत तक बड़ी भद्रता से, बड़ी नम्रता से, नम्र और दीन बनकर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, त्रैक्य देव में से दूसरा जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, वो इस दुनिया में आया है। पहला मुद्दा है द नेचर ऑफ दिस कॉन्डेंसेशन। पहली बार हम देखते हैं कि स्वभाव किस तरह से वो सियासत छोड़कर रियायत में आया है। रियायत का मतलब है नम्र होकर परिवर्तन करके अपने जगत में आना, परमेश्वर का स्वरूप। देखिए 6वां वचन क्या कहता है, पौलुस कहता है कि हु दो ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ गॉड, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने वश में किसी भी चीज को रखने वाले की ताकत रखने वाला यीशु मसीह इस दुनिया में आया, परमेश्वर का स्वरूप, इन द फॉर्म ऑफ गॉड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक परमेश्वर के स्वरूप में था, ऐसी बात नहीं है कि वो परमेश्वर का अवतार लिया हुआ था, नहीं, वो तो परमेश्वर ही था, उसने मनुष्य का अवतार लिया। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टू द नॉस्टिक पीपल, और हमारे जैसे भारतीय लोग हैं उनके लिए ये बात बहुत अप्रूप है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य भगवान बन सकता है, भगवान को मनुष्य बनना और मनुष्य को भगवान बनना हमारे लिए कोई मामूली, मतलब कोई असाधारण बात नहीं है, मामूली बात है। हमारे से कितने भगवान है जो मनुष्य बन चुके हैं, और हमारे से कितने मनुष्य है जो भगवान बन चुके हैं। खैर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब यहां की संस्कृति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि कितने लोगों के बीच में ऐसी बात है तो बहुत सारे नाम आप याद करेंगे और बताएंगे, बट दिस इज डिफरेंट, ये अलग है, ये अलग तरीके से है। एक ही बार सच्चा परमेश्वर इस दुनिया में आया है। परमेश्वर ने अपने हक को, यीशु मसीह ने अपने हक को, परमेश्वर होने का जो उसका हक है, उसका वैभव वो छोड़कर, देखिए किस तरह से कहते हैं, परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ओके, ही डिड नॉट काउंट इट इक्वल विथ गॉड, काउंट इट उसने माना नहीं। जब यीशु मसीह को इस दुनिया में देहधारी बनकर आना था, यह परमेश्वर का नियोजन था, यह परमेश्वर की योजना थी, उसकी खुद की इच्छा थी, और उस खुद की इच्छा को, परमेश्वर के योजना को और परमेश्वर ने दी हुई भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यह सब हो रहा था। इस सब बातों को देखते हुए उन्होंने अपने मिशन में अपने हक को छोड़ दिया, अपने अधिकार को छोड़ दिया, अपने पद को छोड़ दिया। पांचवा वचन कहता है, जिस तरह से यीशु मसीह का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव इस तरह से हो। किस तरह का स्वभाव था? कि वो यीशु मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है, वो यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वर्ग तुल्य है, जो जिसको पूरे स्वर्ग में एक ही अधिकार है, जो परमेश्वर खुद है, जो प्रभु है, जो तुम्हारा और हमारा उद्धार करता है, जिसने सारी दुनिया को रचाया है, वो तुम्हारा और हमारा उत्पन्न करता है, उद्धार करता है, जिसने रचाया नहीं सिर्फ दुनिया को, सिर्फ संभालता भी है, ऐसा परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, ऐसा परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, ऐसा परमेश्वर जो सर्व सामर्थ्यशाली है, ऐसा परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आता है, अपने हक को वो छोड़ देता है, अपने पद को वो छोड़ देता है। In English it says, a things to be grasped in this way. Okay? कल्पना कीजिए, आपके गवाही और मेरी गवाही में बहुत सारा फर्क होता है, बहुत सारी बातें कभी कभी हम इस तरह से कहते हैं हमारे गवाही में, और मैंने बहुत सारी ऐसी गवाही सुनी है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर था और इस तरह से हुआ कि मैं खुद बीमार पड़ गया और फिर मेरी डॉक्टरी काम में आई और फिर परमेश्वर के लोगों ने आके मेरे बीच में प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली और मैंने फिर डॉक्टरी छोड़कर परमेश्वर के सेवकाई में भाग लिया है? और हम कहते, अरे इसने डॉक्टरी छोड़ दी, उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी, उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना पद को छोड़ दिया, अपने जितने भी साधन सामग्री है उसको छोड़कर वो परमेश्वर की सेवा में आए, कितना महान काम है। कुछ भी नहीं है, वैसा देखा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर ने छोड़ा है वो हम में से कोई भी नहीं छोड़ सकता है। आपके लिए और मेरे लिए जो परमेश्वर ने छोड़ा है वो हम में से कोई भी नहीं छोड़ सकता है। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने जो बलिदान दिया है वो हम में से कोई भी नहीं दे सकता है। चाहे हम कितना भी कुछ परमेश्वर के लिए न्यौछावर कर दें, चाहे हम कितना कुछ परमेश्वर के लिए अर्पित कर दें या उसके सामने बलिदान करें या उसको भेंट अर्पण करें, जो कुछ भी हम कहते हैं हमारा है वो सब परमेश्वर यीशु मसीह का है। लेकिन जो उसका है, उसका खुद का, मूलता से उसका खुद का था, जो किसी का नहीं सिर्फ उसका ही था और उसका ही अधिकार था उसके ऊपर, परमेश्वर कहलाने का अधिकार, स्वर्ग का राजा कहलाने का अधिकार, एक उत्पन्नकर्ता के रूप में जानने का अधिकार,
एक उद्धारकर्ता के रूप में जानने का अधिकार, वो अधिकार उसने छोड़कर देहधारी बनकर वो हमारे बीच में आए, अपना हक उसने छोड़ दिया है। He made himself nothing is the word that is used in verse number 7. उसने अपने लिए एक ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप मनुष्य की समानता में हो गया। And we will talk about that one, the change later on and what change happened, and किस तरह से बदलाव हुआ, किस तरह से बदलाव नहीं हुआ यीशु मसीह के इस आने में, सियास से रियाद तक आने में, उसके इस यात्रा में क्या बदलाव हुआ हम देखेंगे, क्या इस तरह से बदलाव नहीं हुआ ये भी हम देखेंगे। लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए कि आठवां वचन को जब हम देखते हैं और नवे वचन को हम देखते हैं तो सातवें वचन में विशेष तौर से कहा गया है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। He made himself nothing, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया। महर्षि महेश योगी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट वन, ही इज द वन हु स्टार्टेड TM, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, बिकम वेरी फेमस इन US। ओके, फॉर अस इज नथिंग, ओके, बट फॉर देम इट इज ग्रेट थिंग, ओके, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ओके, राइट नाउ द आइडिया इज बीन प्रमोटेड बाय पंडित रविशंकर। द आइडिया इज सिंपल, मेक यूअर सेल्फ नथिंग, ओके, इट्स अ बुद्धिस्ट आइडिया, मेक यूअर सेल्फ नथिंग एंड देन यू विल अटेंड सॉल्वेशन। अपने आप को शून्य कर दो, अपने आप को, अपनी सोच को क्या करो, शून्य कर दो, ताकि फिर अपने अंदर के ईश्वर को आप जगा पाओगे। Well, that has nothing to do with the Bible. That has absolutely nothing to do with the Bible. मनुष्य अपने आप को शून्य नहीं कर पाता है, ये तो परमेश्वर है जिसने अपने आप को शून्य किया। यू नो व्हाट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जब कोई लोग मुझे कहते हैं कि अपने आप को शून्य करो, मैं कहता हूं मैं पहले से ही शून्य हूं। आई एम बोर्न आउट ऑफ डस्ट, एक पानी का बुलबुला के जैसा हूं, मैं उस घास के जैसा हूं जो सुबह उठती है और सूरज की धूप से सूख जाती है। मेरा जन्म, मेरी पूरा करियर, मेरा पूरा परिवार उस तरह से, मनुष्य का जन्म, मनुष्य की जान की कीमत मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से रचाया हुआ है, और उस मिट्टी से बनाए हुआ, उस मिट्टी से रचाए हुए को और कितना आप शून्य करेंगे, उसकी कीमत ही शून्य है। ये तो परमेश्वर है जो राजाओं का राजा, जिसने खुद को, अपने आप को शून्य किया, क्योंकि वो अमूल्य है, उसका मूल नहीं हम जान सकते, उसको हम दांव पे नहीं लगा सकते, उसकी कीमत नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेशकीमती मूल्यवान है। ऐसे व्यक्ति ने आपके लिए और मेरे लिए शून्य बनकर दास का स्वरूप धारण किया। नीड टू अंडरस्टैंड, व्हेन ही सेड नथिंग डजंट मीन कंप्लीटली नथिंग, शून्य बनना इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। उसने दास का स्वरूप धारण किया है, वो एक नम्रता का और दीनता का प्रतीक और उदाहरण हमारे लिए बन चुके हैं। जब ये हो रहा था, जब वो सियासत से रियासत तक आ रहे थे, तो कुछ बदलाव उनके बीच में आया, क्या? कुछ बदलाव उनके बीच में आया। कुछ बदलाव उनके बीच में आया, उस बदलाव को हम देखते हैं। योना की किताब इसका छठवां अध्याय इकलौता वचन कहते हैं कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। देयर वॉज अ ग्रेट चेंज इन द स्टूपिंग, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, उस चीज में एक बदलाव आया कि स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आ गए। ये बदलाव है, स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आ गए, ये बहुत बड़ा बदलाव है।
और वो अपने अमीरता को, अपने धन को छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए गरीब बन गए, कंगाल बन गए। दूसरा करिन्थी इसका 8:9 यही कहता है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वो धनी होकर तुम्हारे लिए और मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम सब धनी बन जाए। वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, एक बदलाव हुआ। उसने धनवान, वो जो धनवान था, वो पूरा धन छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए वो क्या हो गया, गरीब बन गया, कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल बनने से हम धनी बने। और फिर वो अपनी महिमा, विजिबल ग्लोरी, अपनी महिमा, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव जिसे हम कहते हैं, वो पूरा छोड़कर, वो सत्ता छोड़कर इस जगत में आया, जन्नत को छोड़कर इस धरती पर आया। यौहान रचित सुसमाचार इसका 1:10 वो जगत में आया और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना, जगत ने उसे नहीं पहचाना। यौहान रचित सुसमाचार इसका 17:5 अब यीशु मसीह खुद कहता है उस प्रार्थना में, हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के सृष्टि से पहली थी। वो यीशु मसीह पूरा महिमामय था, जब इस दुनिया में आने से पहले बहुत ही महिमामय था। वो इस तरह की महिमा रखता था जिस तरह से हम देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग मूसा के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ में बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो परमेश्वर पिता ने उनसे कहा कि मूसा से कहा कि आपने लोगों से कहे कि वो पहाड़ के नजदीक बना जाए क्योंकि वो इतना पवित्र है। और जब परमेश्वर ने उनसे बातें की तो लोग इतने डर गए, इतने थर थर कांपने लगे, कहने लगे कि उस पवित्र पिता और हमारे बीच में कोई न कोई एक बिचवई होना चाहिए। इसलिए इज़राइल के लोगों ने, यहूदी लोगों ने मूसा से विनती की और कहा कि आप हमारे बीच में बिचवई बनके रहो, ताकि उस बिचवई से, पवित्रता से हम आगे रह पाए, पीछे रह पाए, एक दूरी बरकरार रह पाए, क्योंकि उस पवित्र परमेश्वर की महिमा को शायद हम अपने आंखों से देख नहीं पाते, उस पवित्र परमेश्वर को हम कभी भी छू नहीं पाते थे। वो ऐसा परमेश्वर है कि जिसने कहा है कि आप अगर मेरी महिमा देखते हो तो आप निश्चित ही मृत्यु पाओगे। ऐसे महिमामय पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। ये परमेश्वर का नियोजन है, ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर का हमारे प्रति प्यार है कि जिसमें यीशु मसीह को देहधारी बनकर हमारे बीच में लाया, ताकि हम उसकी पवित्रता को जान पाए, ताकि हम उसके महिमा में शामिल हो पाए, ताकि हम उसके वैभव में शामिल हो पाए, ताकि हम भी उसके ऐश्वर्य के, उसके अमीरी के, उसके धन के भागीदारी बन सके, वारिस बन सके। कितनी अभूतपूर्व बात है ये, कितनी सौभाग्यशाली बात है ये कि हम जो कंगाल थे, हम जो मिट्टी थे, हम जो परमेश्वर के दुश्मन थे, हम जो पाप में गिरे हुए थे, हम जो मृत्यु की ओर बढ़े हुए थे, ऐसे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर देहधारी बनकर खुद हमारे बीच में आकर क्रूस का मृत्यु सह लेता है, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो, ताकि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में पश्चाताप जाग उठे, ताकि हम भी उसके जैसे नम्र और दीन बने, ताकि हम भद्रता में गिड़गिड़ाते हुए उसके सामने आकर ये कहे, हे पवित्र परमेश्वर मुझ पर भी दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर भी दया कर, मुझे माफ कर, मैं पापी हूँ और मैं जानता हूं कि आप अपनी महिमा छोड़कर मेरे लिए, हां खास मेरे लिए इस धरती पर आए हो, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से उठा, मेरा है मसीह।
मैं मसीह का हूं, हम सब मसीह के हैं, आओ क्या खुशी खुशी मनाओ। यही तो क्रिसमस है। बट यस, जो बदलाव हुआ वो सही था। अपनी ग्लोरी उसने छोड़ दी और उसको बड़ी रहस्यमय तरीके से छिपा दिया, ताकि जब वो हमारे बीच में आया तब हमने उसको तेजोमय प्रकाश में इस तरह से नहीं देखा। हम यीशु मसीह को इस तरह से नहीं देखा जिस तरह से हमने आंखें बंद कर ली। ओह, आई नीड 3D गॉगल्स टू सी द ग्लोरी ऑफ जीसस। नो, यू डोंट हैव टू हैव 3D गॉगल्स, है ना? ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर परमेश्वर इस दुनिया में आता है, और जब आप उस समय में अगर उस जगह पे होते जहां पे उसका जन्म हुआ, और आप उनके साथ में चलते, अगर मार्केट में आप यीशु मसीह से टकरा भी जाते बाजार में, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाते। अरे यीशु है क्या? अच्छा ठीक है, नमस्कार। नॉर्मल सा, साधारण सा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसे काफी लंबी ज्यादा मूछे थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि काफी लंबी ज्यादा दाढ़ी थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आम आदमी से कई गुना ज्यादा ऊंचा था, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आम आदमी से कई ज्यादा नाटा था, या ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आम आदमी से कई ज्यादा मोटा था। ऐसी कोई भी बात, एक साधारण सा आदमी। अगर मार्केट में जाते आप टकरा भी जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई, ये परमेश्वर है, जब तक वो खुद नहीं बताता। किसी को भी पता नहीं चलता कि ये परमेश्वर है। इस तरह से एक साधारण स्वरूप मनुष्य का धारण करके वो इस दुनिया में आया है। लेकिन अपने ईश्वरीय स्वरूप को उसने नहीं छोड़ा, अपने ईश्वरीय स्वभाव को या गुण को उसने नहीं छोड़ा है। क्योंकि हम देखते हैं जिस धरती पर वो आया था, जिस धरती पर वो 3.5 साल तक था, जिस धरती पर वो था और हमारे लिए मारा गया, हम देखते हैं वो मर जाने से पहले बहुत सारे चमत्कारिक और अद्भुत कार्य उसने हमारे जीवन में किए हैं, और हम इस बार इतिहास इस बात का गवाह है, बाइबल इस बात की गवाही है। Okay? आपके जीवन में परिवर्तन, मेरे जीवन में परिवर्तन इस बात की गवाही कि यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आया है देहधारी बनकर, और वो परमेश्वर था, वो ईश्वर था, उसका ईश्वरीय गुण कभी भी नहीं बदला है। वो तब भी जब वो मनुष्य था तब भी वो इतना ही सामर्थ्यशाली, इतना ही प्रभावशाली था जितना वो स्वर्ग में था। अपने हक को तो उसने छोड़ा है, अपने गुण को नहीं छोड़ा, अपने स्वभाव को उसने नहीं छोड़ा है। वो क्यों इस धरती पर आया? द पर्पज ऑफ हिज कॉन्डेंसेशन, क्यों इस धरती पर आया? पहली बात हम देखते हैं इब्रानी की किताब इसका 2 अध्याय 9वां वचन। वचन कहता है, पर हम यीशु मसीह जो स्वर्गदूतों से कुछ कम ही किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। पहली बात हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर देहधारी बनकर मनुष्य बना, यीशु मनुष्य क्यों बना, क्यों क्रिसमस हुआ। पहली बात है, क्रिसमस होने का कारण है कि हम पापी लोगों के लिए जो मृत्यु में फंस चुके थे, कैद में फंस चुके थे, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखने के लिए वो देहधारी बनकर इस दुनिया में आया है। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 10वां वचन, परमेश्वर खुद कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। हमें मृत्यु से बचाने के लिए वो यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आया है, हमें अनंत जीवन, भरपूरता का जीवन, बहुताय रीति का जीवन जीने के लिए, देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। गलती का राजपत्र इसका 2 अध्याय 20वां वचन, वचन कहता है, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ा गया हूं। पावलस कहता है, अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हमारे बीच में आज मसीहत खुशी से उमड़ रही है, इस बात की गवाही है कि मसीह हमारे लिए मारा गया टू शेयर विथ सिनर हिज इटर्नल लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल ही केम टू टेस्ट द डेथ, सेकेंडली ही केम टू शेयर हिज लाइफ विथ द सिनर, थर्डली ही केम टू सिंपथाइज विथ सिनर. हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 17, इब्रानी की किताब इसका दूसरा अध्याय 17 वचन. इस कारण उसको चाहिए था, परमेश्वर ईसा मसीह को चाहिए था कि वो सब बातों में अपने भाइयों के समान. कितना प्यारा वचन है. इब्रानी की किताब इसका दूसरा अध्याय 17 वचन अगर आप चाहते हैं तो खोल कर देख लीजिएगा. कितना प्यारा वचन है, क्योंकि इस वचन में मुझे भाई बनाया गया है. यीशु मसीह का क्या गया है? भाई बनाया गया है. अनलाइक दैट वर्ड, बिकॉज दैट्स वर्ड आई एम बिकम रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह का भाई मुझे बनाया गया है. वो कहता है उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो सब बातों से जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पाप का प्रायश्चित करे. लोग अपने पाप के प्रायश्चित करने के लिए वो मेरा भाई बन गया है. अवतार तो बहुत सारे लोगों ने लिए है, भाई सिर्फ एक ही बना. अवतार बहुत सारे लोगों ने लिए है, भाई सिर्फ एक ही बना. छुटकारा तो बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन छुटकारा देने वाला हम में से पैदा होकर हमारे साथ में रिश्ता जुड़ाने वाला एक ही है, जो मेरा भाई बना. बहुत सारे छुटकारा देने वाले लोग अपने आप को मसीहा कहते हैं और हम उसे मालिक कहते हैं. भाई एक ही बना. He became brother to me. Thirdly, next we see, not only sympathize with sinner, but to show sinner's godliness. पहला तिमोथी इसका तीसरा अध्याय 16वां वचन. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ यीशु मसीह, आत्मा में धर्मी ठहराया गया वो यीशु मसीह, स्वर्गदूतों को दिखाया गया वो यीशु मसीह, अन्य जातियों में जिसका प्रचार हुआ वो यीशु मसीह, जगत ने उस पर विश्वास किया वो यीशु मसीह, और महिमा में ऊपर उठाया गया वो यीशु मसीह, आपके बीच में और मेरे बीच में उसकी पवित्रता देने के लिए आया है, ताकि हम भी उसके जैसे पवित्र बने, ताकि हम भी उसके जैसे अलग किए हुए बने, ताकि उसका जो स्वभाव है हमारा भी उसकी तरह से स्वभाव हो, ताकि हम उसके परिवार में शामिल हो पाए. Why will someone leave his own family inheritance on my name that I become a part of his family? क्यों कर अपने संपत्ति और जायदाद से अलग होकर कोई मेरे बीच में आता है और मुझे उसकी संपत्ति और जायदाद का वारिस ठहराता है? एक ही बार ऐसा होता है, और वो यीशु मसीह ने किया है. टू शो द सिनर द परफेक्ट ह्यूमैनिटी, एक खरी और सच्चाई का समाज है, जो एक सच्चाई की मनुष्यता है. देहधारी बनकर आना मतलब क्या है वो हमें बताता है दूसरा करिंथी इसका तीसरा अध्याय 18 वचन में. परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट हुआ, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी के तेजस्वी रूप से अंश अंश करके बदलते जाते हैं, ताकि हम में बदलाव आए, ताकि हम पाप का मार्ग छोड़कर पवित्रता के ऊपर बढ़े, ताकि हम उसके सियासत में शामिल हो पाए, ताकि हम उसके धन के वारिस बन पाए, ताकि हम उसके जायदाद में शामिल हो पाए, ताकि हम उसके भाई बने, ताकि हम उसके कुटुंब का उसके परिवार का हिस्सा बने. इसलिए वो मेरा भाई बना, ताकि हम दिन ब दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर, दिन ब दिन परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से मूल रूप से घुट घुट कर हम पवित्रता की ओर बदलते चले जाएं. इसलिए तो उसने जन्म लिया है, ताकि मैं उसके जैसा बनूं. परमेश्वर यीशु मसीह ने जन्म लिया ताकि मैं उसके जैसा बनूं, ताकि आप उसके जैसे बने, ताकि आप उसके जैसे बने। और आखिर में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर इस दुनिया में आया। यूहन्ना के सुसमाचार इसका पहला अध्याय और आठवां वचन। परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। खोजते तो सब रहते थे, ढूंढते तो सब रहते थे, और अपने कल्पना से उस ईश्वर की प्रतिमा को बनाते रहते थे कि शायद मेरा परमेश्वर इस तरह से दिखता होगा, शायद मेरा परमेश्वर इस तरह से होगा, उसके शायद बहुत बड़े हाथ, ज्यादा हाथ होंगे, उसके शायद ज्यादा बातें होगी। इधर आगे एक खुशी है, परमेश्वर यीशु मसीह देहधारी बनकर जब इस दुनिया में आए तो हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को हमारे बीच में क्या किया, प्रकट किया। परमेश्वर को हमारे बीच में प्रकट किया। दिस इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। सियासत से रियातक आना, रियायत तक आना, अपनी राजगद्दी को छोड़कर इस धरती पर आना। और वो क्यों आया? हम जैसे पापियों के लिए आया, ताकि हम मृत्यु से बच पाए, ताकि हम बहुताय की जिंदगी जान पाए, ताकि हम पवित्रता की ओर बढ़े, ताकि हम सच्चे मनुष्य होकर उसके तेज में, उसके प्रताप में आगे बढ़ पाए, ताकि हम उस रहस्यमय परमेश्वर को देख पाए, ताकि वो परमेश्वर का चेहरा बन पाए। अगे अब हम देखते हैं, कैन यू शो मी योर गॉड? यस, वी कैन शो आवर गॉड, दैट्स जीसस क्राइस्ट। इज गॉट द फेस, इज गॉट द बॉडी, उसको शरीर है, एक चेहरा है। शायद आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि ईसा मसीह लंबे बाल वाले है, लंबे नाक वाले और वो गाउन डाल के है, आते हैं। साधारण सा है, एक साधारण से मनुष्य के रूप में। ऐसा नहीं कि आप उसे तुरंत भीड़ में पहचान पाए है, शायद आप भीड़ में नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपकी व्यक्तिमत्व उतना खुल होना चाहिए। इट शुड बी कैरिस्मैटिक पर्सनैलिटी इन ऑर्डर टू बी स्टैंड अलोन इन द क्यू, बट ही वॉज नॉट कैरिस्मैटिक, दैट्स वन टू इन एनी सेंस। आइज़ाया 53 कहता है कि वो शायद इस तरह से दिखते थे कि कोई उनको देखना भी पसंद न करता होगा, मृत्यु के समय में कोई उनको देखना भी पसंद न करता होगा। इतने भी विद्रूप नहीं थे, इतने भी भयानक नहीं देखते थे, इतने भी डरावने नहीं थे। डोंट समटाइम्स व्हेन वी पोर्ट्रे जीसस क्राइस्ट फ्रॉम आइज़ाया 53, ही लुक्स लाइक एन हॉरर फिल्म गाय। डरावना नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ नम्र और दीन बनकर हमारे बीच में एक साधारण के रूप में आए, ताकि हम ईश्वर कौन है उसके चेहरे को जान पाए। आइए मेरे साथ में चलते अभी लुका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 26 से लेके 38 वचन। लुका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 26 से लेके 38 वचन तक है। लुका यही बात को अलग तरीके से साबित करता है, वास्तविकता में क्या हुआ। ये तो हमने देखा कि परमेश्वर पिता की योजना क्या थी, किस तरह से नियोजन किया गया था, किस तरह से स्वर्ग में बातें हुई थी, किस तरह से पिता ने अपने पुत्र को देहधारी बनकर इस दुनिया में भेजा था, क्या कारण था जिसके लिए देहधारी बनना यीशु मसीह को जरूरी था, ये हमने देखा। अभी एक्चुअली क्या हुआ,
कब हुआ, कैसे हुआ, आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 26 वचन से लेकर 38 वचन तक। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने एक पुरुष से हुई। उस कुमारी का नाम मरियम था। क्या? तो अभी वास्तव में हमें पता चला कि यीशु मसीह के मां चुनी गई है, उसका नाम मरियम है और वो कुंवारी है। स्वर्गदूत 28वां वचन, स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है, व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रीटिंग इज दिस। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देखिए ध्यान से पढ़िए उस वचन को, 31वां वचन लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 21वां वचन कहता है, देख कुमारी मरियम तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। 32वां वचन कहता है कि वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, उसके राज्य का कभी अंत न होगा। वर्स 34, लुक एट दैट एंड पॉन्डर ओवर इट। मरियम ने कहा स्वर्गदूत से, यह कैसे होगा, हाउ विल दिस बी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये सवाल बहुत बार हमारे जीवन में आता है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये सवाल हमारे जीवन में हम बहुत बार उठाते हैं, क्यों कर हुआ, किस वजह से हुआ। मरियम ने भी अपने जीवन में एक अद्भुत घटना होने के लिए जब स्वर्गदूत उसके सामने आता है और कुछ ऐसी बातें बताता है कि जो उसने जिंदगी में कभी सुनी नहीं है, ऐसी बातें बताता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा है कि तू गर्भवती होगी और फिर तुझे पुत्र होगा और फिर वो याकूब और वो घराना और वो यीशु और वो सबको बचाएगा। रुको रुको रुको, आप क्या बता रहे हो, ये सब बातें कैसे होगी, ये सब कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम अपने आप में इतनी खो चुकी थी, अपने सपनों में, अपने संसार में, अपने मंगनी के समय में इतनी खुश थी, है ना, कि अपने मंगनी के समय में इतनी खुश थी कि वो सोच रही थी कि ये मेरे साथ में अचानक तरीके से ये अभूतपूर्व कृत्य परमेश्वर की ओर से होने जा रहा है, जिसकी गवाही, जिसकी घोषणा स्वर्गदूत खुद आकर मुझे कहता है, ये सब मेरे जीवन में कैसे होगा।
जैसे मैंने कहा, मिराकल्स, चमत्कार,
गूढ़ रहस्य अब खुलने जा रहा है, परमेश्वर हमारे बीच में आने वाला है, एक चेहरा लेकर, देहधारी बनकर, मनुष्य का रूप धारण करके वो इस दुनिया में आने वाला है। और हम कहते हैं ये कैसे होगा। अभी हम कहना चाहिए, अच्छा हुआ ये हुआ, अच्छा हुआ ये हुआ, ताकि मैं बहुताय का जीवन पा सकूं, वो अनंत काल का जीवन पा सकूं, उस खुशी को जान सकूं जो यीशु मसीह ने उसके मृत्यु के द्वारा मुझे दी है, उस नरक से मुझे बचा लिया गया। अच्छा हुआ कि जो कुछ हुआ उस औरत के साथ में अच्छा हुआ। इंटरेस्टिंग है ना, एक औरत के जीवन में इतना बदलाव, इतना चमत्कार, इतना अद्भुतपूर्व घटना घटता है जिसका परिणाम सारी दुनिया को महसूस होता है। नहीं तो मेरा और मरियम का क्या रिश्ता है, और आपका और मरियम का क्या रिश्ता है, نہ آپ مریم کو جانتے ہو نہ مریم آپ کو پتا ہے. اگر میں نے مریم کو کہا کہ آپ کو پتا ہے یہاں سے 2015 سال میں ناسک میں فلانا والے لوگ ہوں گے, تو کہا ہاں.
اگر میں نے آپ کو کہا کہ ابھی 2014 سال پہلے جب مریم وہاں رہتی تھی تو وہ اس گھر میں رہتی تھی, تو آپ کہیں گے کیا پھینک رہے ہو بھائی, سچ مچ میں کیا. لیکن تھی وہ, پرمیشور کا وچن کہتا ہے ایک سادھارن سی کنواری لڑکی تھی جس کی منگنی ہو چکی تھی اور جس کے ساتھ میں ایک ابھوتپورو چمتکار ہونے جا رہا تھا, جس چمتکار سے دنیا آپ کی اور میری بدلنے والے تھے. پتا نہیں میرا مریم کے ساتھ میں کیا رشتہ ہے, پتا نہیں آپ کا مریم کے ساتھ میں کیا رشتہ ہے, لیکن ایک بات ہے, اس کے دوارا جو پتر اس دنیا میں آیا اور جس نے اس کا لہو کرس کے اوپر بہایا, جس کے وجہ سے آپ مجھے بھائی اور میں آپ کو بھائی اور بہن کہہ سکتا ہوں, ہے نا. ایک رشتہ میں, ایک پریوار میں ہمیں باندھا گیا. مریم بھی اس پریوار کے سدسیہ ہو گئے. The nature of a conception is miraculous and mysterious. How can this be? اس کا جننا, پرمیشور یسو مسیح کا گرب دھارنا اور اتپن ہونا. 35 وچن میں جس طرح سے کہتا ہے کہ سورگ دوت نے کہا پوتر آتما کیسے ہوگا, بتایا گیا ہے کس طرح سے ہوگا. 35 وچن کہتا ہے پوتر آتما تجھ پر اترے گا, مریم کے اوپر اترے گا, اور کیا ہوگا, پرم پردھان کی سامرتھ تجھ پر چھایا کرے گی. اچھا, پھر اس لیے جو پوتر ہے اتپن والا ہے وہ پرمیشور کا پتر کہلائے گا. That's all. صرف اتنا ہی ہوگا, لیکن جو ہوگا وہ بہت گڑ ہوگا, رہسمے ہوگا, ادبھت ہوگا, جس سے پھر مریم کی زندگی بدلنے والی ہے. ایک ایسی گھوشنا ہے جس سے پر مریم کی زندگی بدلنے والی ہے اور جس کے دوارا آپ کی زندگی اور میری زندگی بدلنے والی ہے. ایک ایسی الوکک گھٹنا وہاں ہونے جا رہی ہے. اے پوتر آتما تجھ پر اترے گا, پرم پردھان کی سامرتھ تجھ پر چھایا کرے گی, اور وہ پوتر جو اتپن ہونے والا ہے, وہ پوتر ہے جو اتپن ہونے والا ہے, کیا پرمیشور کا پتر کہلائے گا. یو ول بی کالڈ سن آف گاڈ, پرمیشور کا پتر کہلائے گا. اس کا دیہداری بننا اپرتیم, الوکک اور چمتکارک تھا. اس طرح سے کوئی بھی ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے. حالانکہ دنت کتھائیں اور کلپنائیں بہت ہیں, دنت کتھائیں اور کلپنائیں بہت ہیں, لیکن ایتہاسک گواہی رکھنے والا ایک ہی ویکتی ہے اس اتہاس میں. جب سے دھرتی کا جنم ہوا ہے, جب سے دھرتی بنائی گئی ہے, جب منشیہ کو بنایا گیا, جب سے آپ اس دنیا میں ہو تب سے لے کے جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے تب تک, اور اس کے بعد میں جب اس سرشتی کا ناش ہوگا تب تک, ایسا کبھی نہیں ہوا ہے نہ کبھی ہونے والا ہے. ایک الوکک اپرتنیہ ایسی یہ گھٹنا ہے. اتنا ہی نہیں, اٹس ناٹ اونلی جسٹ سپر نیچرل بگیٹنگ بٹ اٹس سپر نیچرل پرسن اینڈ دین سپر نیچرل پرزرویشن. منشیہ کا پتر کہلائے گا, وہ منشیہ کا پتر کہلائے گا اور وہ پرمیشور کا بھی پتر کہلائے گا. 35 وچن کہتا ہے کہ وہ پرمیشور کا پتر کہلائے گا, پرمیشور کا پتر کہلائے گا. جس طرح سے آپ ونشج کو دیکھتے ہیں اس بھاگ میں لوکا بہت طرح سے اتہاس بتاتا ہے کہ مریم کی اور سے کس طرح سے وہ یسوع مسیح کے ساتھ میں جڑا گیا ہے, یوسف کی اور سے کس طرح سے جڑا گیا ہے. وہ یہ بات میں ثابت کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے
मनुष्य का अंश या बीज यीशु मसीह में नहीं था, वो सिर्फ एक गर्भ को उधार लिया गया था ताकि वो अपने आप को चेहरा दे पाए, ताकि वो अपने आप को चेहरा दे पाए, ताकि वो उस शाप से बच पाए जो शाप दिया गया था कि जब मनुष्य पाप की वजह से पवित्र परमेश्वर से अलग हो गया है, परमेश्वर ने कहा ऑल हैव सीन, सब ने पाप किया है और मृत्यु के लिए दंड के लिए योग्य ठहराए गए हैं। उस शाप से सिर्फ एक ही व्यक्ति वंचित था और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह जो वो पैदा हुआ, जरूरी नहीं था कि वो कभी मरे, क्योंकि वो परमेश्वर है जो कभी मरता नहीं, कभी मरता नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए और मेरे लिए उसने मृत्यु का स्वाद को चखा है जो हमने देखा है। कुछ लोग जब इस गर्भधारणा की बात करते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर संदेह शक जाहिर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुमारी के पेट में एक बच्चा पैदा हो और जिसका मनुष्य के साथ में कोई संबंध ना हो। किस तरह से हुआ, 35वां वचन हमें पूरी जानकारी देता है। स्वर्गदूत खुद इस बात की जानकारी मरियम को भी देता है और हमको भी देता है, कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ये परमेश्वर की ओर से है, ये पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम है, ये परमेश्वर परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। सिर्फ लुका में इस बात को लिखा गया है, पावलस ने इस बात को नहीं बताया, पेत्रस ने इस बात को नहीं बताया, याकूब ने इस बात को नहीं बताया, यूहन्ना ने इस बात को नहीं बताया। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एक ही बार लुका ने बताया और आपने उसे मान लिया। हाँ, हमने मान लिया क्योंकि जो बताया गया है वो सच है, इसलिए हमने माना। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जो भी बताया गया है उसे कभी भी पेत्रस ने, पाउलस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने या फिर किसी भी अर्ली चर्च फादर जो अपने बुजुर्ग व्यक्ति थे, चर्च के इतिहास के एल्डर थे, उन लोगों ने कभी भी इस बात को शक से, निगाहों से नहीं देखा है। सबको ये बात मंजूर थी, सब इस बात का गवाह थे, सब इस बात को जानते थे और उसने ग्रहण किया था, स्वीकार किया था इस सच्चाई को। हा, पवित्र आत्मा उतरने से, परम प्रधान के सामर्थ्य की छाया रखने से, एक कुंवारी के पेट से परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया है जिसका नाम यीशु है। आई डोंट नीड अनदर रेफरेंस टू दैट, मुझे किसी और सबूत की जरूरत उसके लिए नहीं है। जो सबूत मेरे लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया गया है वो सबूत मेरे लिए काफी है कि यह अद्भुत कार्य सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। देयर इज अ साइकोलॉजिकल, थियोलॉजिकल एंड अपोलॉजिकल रीजंस टू दैट वन। एक मानस शास्त्र की ओर से, ईश्वरीय विज्ञान की ओर से और सबूत, ऐतिहासिक सबूत की वजह से हम इस वचन को अगर देखेंगे तो बहुत सारे सबूत हमारे बीच में है जिससे हम कह सकते हैं कि कुंवारी के पेट से एक बच्चा पैदा हुआ, इतिहास में पहली बार और आखिरी बार। जिस बात की भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी हो गई, परमेश्वर की योजना सफल हो गई। जो समय की पूरी, जब समय जब पूरा हुआ तो यीशु मसीह हमारे बीच में देहधारी बनकर आया, उसने मनुष्य का रूप लिया परमेश्वर के स्वरूप को छोड़कर, परमेश्वर के राजगद्दी को छोड़कर तुम्हारे लिए मेरे लिए दास दास वो बना, यहां तक कि वो शापित मृत्यु जो क्रूस के ऊपर है तुम्हारे लिए मेरे लिए वो सह गया। गॉड बिकेम फ्लश, गॉड इज स्पिरिट है ना, क्या परमेश्वर एक आत्मा है, पहली बार वो शरीर में आ रहा है। परमेश्वर एक आत्मा है, पहली बार परमेश्वर अभी शरीर ले रहा है, शरीर ले रहा है, देहधारी बनकर, एक अवतार बनकर वो इस दुनिया में हमारे लिए आ रहा है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उद्धार का पूरा श्रेय हो सिर्फ परमेश्वर को जाए। सालवेशन बिलोंग्स टू द लॉर्ड, सेवियर बिलोंग्स टू द लॉर्ड, नॉट ओनली जस्ट सालवेशन, इवन सेवियर बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हमारा उद्धार परमेश्वर की ओर से है और जो उद्धार करने वाला है वो भी परमेश्वर की ओर से है, हमारे बीच में नहीं है। हमारे बीच में वो था लेकिन हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर से हमारे लिए दिया हुआ एक उपहार है, भेंट है। हमारा उद्धार करने वाला, हमें बचाने वाला यीशु मसीह भी परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक उपहार है, एक भेंट है। क्विकली 3 points that I want to share with you by looking at these things. तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर अपने राजगद्दी को छोड़कर देहधारी बनकर इस दुनिया में आता है, एक कुंवारी को जब परमेश्वर चुनता है और जिसके गर्भधारणा से वो एक मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है, वो क्यों आता है, कैसे आता है, हमने जान हमारी प्रतिक्रिया इस बड़े दिन पे, एक ख्रिस्त जयंती पे क्या होनी चाहिए? थ्री थिंग्स, सीक, स्पीक, सिंग। पंद्रह और सोलहवा वचन लुकारचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय और 15 और 16 वचन। जब स्वर्गदूत उनके पास स्वर्ग को चले गए तो गडरिये आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई जिसे प्रभु ने हमें बताया गया देखे। और उसने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और चरने में उस बालक को पड़ा देखा। आओ हम उसे ढूंढे। एक काम परमेश्वर ने बहुत हमारे लिए आसान कर दिया, ताकि जब हम ईश्वर को ढूंढ रहे थे, उस परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहे थे, और जब हम असफल हो गए थे, हम पूरी तरह से थक चुके थे और हम जानते थे कि हमारे कितने भी कोशिशों के बावजूद भी हम उस परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, तभी परमेश्वर ने खुद देहधारी बनकर हमारे बीच में आया ताकि हम उसे ढूंढने से पा सके। आज कैन इट शैल बी गिवन टू यू, नॉक एंड इट शैल बी ओपन, सीक एंड यू शैल फाइंड। आप ढूंढो, आपको मिलेगा कि वो हमारे बीच में था, अभी भी है। पवित्र वचन इस बात की गवाही है और इस त्योहार मनाने की सबसे बड़ी खुशी ये बात में है कि भाई और बहनों, आओ हमारे मन से, हमारे हृदय से उसके ऊपर हम ध्यान लगाएं कि जो हमारे जीवन का सोता है, जो हमारे जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी हुई है, जो हमारे लिए मार्ग है, सत्य है, जीवन है, अनंत काल का जीवन है, बहुताय का जीवन है, भरपूरता का जीवन है, आइए हम उसे पूरी लगन से ढूंढें, आइए हम उसके ओर आकर्षित हो पाए, आइए हम उसकी ओर चले। 17वां वचन कहता है, आइए हम उसके बारे में लोगों को बताएं, उसके ऊपर ध्यान लगाएं,
उसके बारे में लोगों को बताए। इस बड़े दिन पर ख्रिस्त जयंती के अवसर पर, शुभ अवसर पर मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम खुशियां नहीं मनाएं, जिस खुशी से हम उछल रहे हैं हो सकता है उतना ही हक बाकी लोगों के लिए भी है जो अभी तक अंधकार में है, जो अभी तक परमेश्वर के दुश्मन है, जो अभी तक अंधे है, जो अभी तक सच्चाई को नहीं जानते। क्यों इस दुनिया में परमेश्वर आया, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम उसके आदेश के अनुसार जाए और लोगों के बीच में, दुष्ट और पापी लोगों के बीच में ये सुसमाचार बांटे कि आओ मेरे साथ में ख्रिस्त जयंती मनाओ, कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जो तारण करता है, उद्धार करता है, आपके लिए मेरे लिए देहधारी बनकर आया और वो क्रूस के ऊपर मारा गया, जिसके लहू से आपके पाप और मेरे पाप धुले गए। आओ मेरे साथ खुशियां मना। रियल क्रिसमस इज टू शेयर अ जॉय ऑफ द लॉर्ड विथ समवन हु इज स्टिल नॉट नो क्राइस्ट। कल हम गए थे रास्ते में, है ना, रस्ते में गाने गाते हुए हम चल रहे थे। हमारी कोशिश ये थी कि हम जिस खुशी से उछल रहे ठंडी में कुड़कुड़ाते हुए जा रहे थे, मैं तो जोर जोर से ताली मार रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई को बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो ठंडी लग रही थी इसके लिए मैं ताली मार रहा था, रस्ते की बात बता रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी बात थी। और जैसे हम जा रहे थे, हमारी कोशिश ये थी कि ताकि हमारी खुशी लोगों के बीच में बांटे। आओ 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 उस यीशु मसीह को पहचाना जो आपका और मेरा उद्धार करता है। स्पीक अबाउट इट एंड देन वर्शिप, सिंग, आओ गाओ और गाओ। नासिक बाप्टिस्ट क्वायर के साथ में गाओ, भाई प्रवीण के साथ में आओ और गाओ, उसकी महिमा गाओ, उसके वैभव को गाओ, उसके वचन को गाओ। 20वां वचन कहता है, गडेरे जैसा उसने देखा सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आइए हम भी परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए यहां से जाएं। हमारी पूरे सहभागिता में, हमारे पूरे आराधना में, हमारे पूरे उपासना में, जब हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य को, हम परमेश्वर के उस अद्भुत काम को पहचान पाए और दूसरे लोगों के बीच में बांट पाए, ताकि आइए हम उसकी महिमा करें, उसकी ओर हमारा मन और हृदय आकर्षित हो। कम लेट अस सीक हिम, कम लेट अस स्पीक ऑफ हिम, कम लेट अस सिंग टू हिम। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे।